राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 31। उशिनेन्द्र विदिना, तीन श्लोक 7 में है इसलिए 31 लिखा हुआ है। उशी नर इंद्रम विधिना तथा कृतम महिष्यः महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुखिताः हताः स्म नातः इति करैः उरः भृष्णं ज्ञात्यः मुहुः ततः पदयोः उपापतन् उसे नरेन्द्रं विदिना ततकृतः उसे नरेन्द्रं विदिना ततकृतम् पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः पतिं महिष्या प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्म नातो नाथेति करैरुरो भृशम् हतास्म नाथेति करो भृशम् ज्ञात्यो मुहुस्तस्पदयोरुपात पापतम् ज्ञात्यो मुहुरस्तत्पदयोरुपाततम् उशी नरेन्द्रं विदिना ततकृतम् मतिं महिष्या प्रसमीक्ष्य दुःखिताः हतास्मनाथेति करोरुभृशम् ध्यान्त्यो मुहुस्तस्पदयोरुपापतन् नरेंद्रम उसी नर राजा के राज्य के स्वामी को विधिना विधाता से तथा इस तरह कृतम इस दशा को प्राप्त पतिम पति को महिष्या रानिया प्रसमीक्षा देखकर दुखी था अत्यंत दुखी हता मारी गई स्मा निश्चय ही नाथ हे स्वामी इति इस प्रकार करे ही हाथों से उरह वक्षस्थल वृषम निरंतर ज्ञात्यह पीटते हुए मुहुः बारंबार तत्पदयोः राजा के चरणों पर उपापतन गिर पड़ी। अनुवाद इस प्रकार है, जब उशीनर राजा की रानियों ने इस स्थिति में अपने पति को पड़े देखते हुए रोने लगी, हे नाथ तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारे गई ही मारी जा चुकी है। इन शब्दों को लेट लेट कर वे अपनी छाती पीट 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 कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जैसा कि कहा गया है, रभसा दष्ट चद्दम युद्ध के समय राजा क्रुद्ध था, उसने अपने पराक्रम दिखाने के लिए अपने होंठ काटे तो भी वह विधाता विधिवश मारा गया। इससे सिद्ध होता है कि इस उच्चतर शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। हमारी निजी शक्ति का प्रयास सदैव श्रेष्ठ नहीं रह पाता। हम परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति स्वीकार करनी चाहिए। ओम अज्ञात मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाध शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको मालूम है अभी जो प्रसंग चल रहा है वो हिरण्यकशिपु का प्रवचन हो रहा है। हिरण्यकशिपु जब अपने भाई हिरण्याक्ष का मृत शरीर को देख के बहुत क्रुद्ध हुए, क्रुद्ध होने के बाद फिर भी अपने भाई हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने देखा कि हिरण्याक्ष के जितने भी पत्नियां हैं और उनके पुत्र हैं और अन्य जितने भी संबंधी हैं, हिरण्याक्ष की जो मरा हुआ जो शरीर है उसको देख के या बहुत रो रहे थे, उनके अंतिम संस्कार को देखते हुए रो रहे थे, उनके अंदर बहुत शोक था। तो वो शोक को मिटाने के लिए सबसे पहला हिरण्यकशिपु ने प्रवचन देना शुरू किया। उस प्रवचन में उन्होंने आत्मा का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि ये जो शरीर है वो क्षण भंगुर है, आत्मा शाश्वत है, और तीनों गुणों के अनुसार हम कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति को अपना मान के बैठते हैं। तो ये भगवद गीता में जो भगवान सिद्धांत कहते हैं, आत्मा और शरीर का भेद का सिद्धांत, वही सिद्धांत हिरण्यकशिपु कहने लगा। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर ले, इसका मतलब नहीं कि वो दैव है या वो भक्त है। भगवद गीता में भगवान इस बात को स्पष्ट रूप में कहते हैं या प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि नोइंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी एंड स्पिरिट सोल इज नॉट एनफ। केवल ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भले ही यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सोपान है, फिर भी जब तक हम इस निर्णय पर नहीं आते कि आत्मा का स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास, हर क्षण हर पल कृष्ण का दासत्व को स्वीकार करना ही हमारा वास्तविक स्थिति है, तब तक भले ही आत्मा का ज्ञान भी क्यों ना हो, हम असुर ही कहलाते हैं। तो ज्ञान का मतलब है शरीर या प्रकृति यानी भौतिक जगत, आत्मा और भगवान यानी परमात्मा, दोनों के जो नियंत्रण है, इन तीनों के बीच में भेद को जानना और ये तीनों के बीच में परस्पर संबंध को जानना पूर्ण ज्ञान कहलाता है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अगर मान लो कोई पूर्ण तरीके से अज्ञान है तो कभी कभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन आधा ज्ञान जो है बहुत डेंजरस होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो करंट के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में वो आधा ज्ञान है उसका, तो अगर वो उसको उसके ऊपर काम करने का उत्साह तो है, वो काम करने जाएगा तो और वो मर जाएगा। अगर किसी को ज्ञान ही नहीं है तो उसको छुएगा भी नहीं, अगर पूर्ण ज्ञान है तो उसको छू भी सकता है, कार्य भी कर सकता है, अच्छी तरह से रह सकता है। तो वैसे तथाकथित बहुत सारे आध्यात्मिकवादी है जिनको भगवान या भगवत तत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो आत्मा के ऊपर बहुत प्रवचन देते हैं। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि भले ही वो आत्मा का ज्ञान भी क्यों ना हो, नैष्कर्म्यम अच्युत भाव वर्जनम ज्ञानम अलम निरंजनम, भले ही वो ज्ञान वो आत्मा का ज्ञान भी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर अच्युत भाव वर्जितम, अगर भगवान का गुणगान सीधा गुणगान नहीं है, वो ज्ञान आसुरी कहलाता है, भले ही वो आत्मा का ज्ञान भी क्यों ना हो। क्योंकि हम हिरण्यकशिपु के मुख से भी आत्मा का ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु का प्रॉब्लम क्या था, वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण को नहीं मानता है, जो कृष्ण को मानता नहीं है से ही दैत्य करी जानी, जो कृष्ण नहीं माने से ही दैत्य करी जानी। जो कृष्ण को नहीं स्वीकार करता है प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में, भले उसके पास आत्मा का ज्ञान भी क्यों ना हो, वो दैत्य माना जाता है, ही इज ए डेमन। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता है जो आत्म तत्व का बहुत अच्छी तरह के विश्लेषण करते हुए एकदम स्पष्ट रूप में आपके सामने व्यक्त करते हैं, और ये आत्मा का ज्ञान के ऊपर आधारित होते हुए वैराग्य का शिक्षा भी देते हैं, लेकिन वो अगर कृष्ण की प्राप्ति की वर्णन नहीं करता है, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं रखता है, वो आत्मा का ज्ञान जो है वो हिरण्यकशिपु का आत्मा का ज्ञान के बराबर है। तो कभी भी हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये सही बात है भगवद गीता के और भागवतम के बहुत सारे श्लोकों में जहाँ आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, शरीर और आत्मा के भेद का वर्णन हुआ है, उसको ज़रूर समझना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा का मूलभूत अवस्था केवल ये जानना नहीं कि ये शरीर से भिन्न है। अगर ये जानना कि आत्मा क्या है, वो केवल उसका ज्ञान इतना ही सीमित है कि ये शरीर से भिन्न है, तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं माना जाता है। ये पूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से भले ही वो आत्मज्ञान होने पर भी असुरी प्रवृत्तियाँ उनके अंदर रहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये समझ तक हमको आना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तभी ये पूर्ण ज्ञान है। तो आत्मा का दो स्तर का ज्ञान है, एक है नेगेटिव नॉलेज अबाउट द सोल। नेगेटिव नॉलेज अबाउट द सोल मतलब क्या है कि आत्मा क्या नहीं है, शरीर नहीं है, ये जानना सबसे पहला प्रथम सोपान है आध्यात्मिक ज्ञान में। अभी आत्मा क्या है ये दूसरा है पक्ष है, आत्मा क्या है, कृष्ण का दास है। तो हिरण्यकशिपु को पहला पेज मालूम था, ही न्यू द फर्स्ट लाइन क्या था, आत्मा क्या नहीं है, उसके बारे में प्रवचन देना शुरू कर दिया, लेकिन आत्मा क्या है उसको वो बात नहीं मालूम था। इसलिए हिरण्यकशिपु का प्रवचन जो है बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन हिरण्यकशिपु केवल इतना ही नहीं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं था उनके पास, उनको ये भी मालूम था हिरण्यकशिपु को कि ये जो मेरे सामने हैं वो हिरण्याक्ष की पत्नियां हैं, और ये स्त्रियों को फिलॉसफी कितना भी समझाओ वो समझ में नहीं आता है, तो उनको एक स्टोरी चाहिए। तो ये इतना भी बुद्धि था हिरण्यकशिपु के पास कि मैं केवल आत्मा का ज्ञान ही बताना शुरू कर दूं तो फिलॉसफी बताऊं तो इनको कभी भी समझ में नहीं आने वाला है, वो रोते रहेंगे, उनको शांत करने के लिए मुझे एक स्टोरी बताना होगा, एक इतिहास बताना होगा, एक पुराण बताना होगा। तब हिरण्यकशिपु ने पुराणों का एक घटना सुनाया। अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि मायावादी लोग पुराणों को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इधर हम जानते हैं कि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर होने के बाद भी वो पुराणों को स्वीकार किया, तो इसका मतलब ये मायावादी लोग जो हिरण्यकशिपु से भी गड़े गजरे कुछ ऐसा एक संस्था है जो वो कहते हैं वेदों को स्वीकार करना चाहिए लेकिन पुराणों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। संस्था का नाम तो मैं बता दूं, हाँ, आर्य कुमार, आर्य समाज, और भी कुछ लोग हैं जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर होने के बाद भी उन्होंने ये शास्त्रों की जो सत्ता है उसको स्वीकार किया, शास्त्रों का प्रमाण को स्वीकार किया, और उन्होंने एक ऐसा प्रसंग का वर्णन किया जिसमें यमराज का प्रवचन है। अब देखिए हिरण्यकशिपु यमराज को भी स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम जब एक अथॉरिटी या एक प्रमाण को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार उतना हद तक ही करते हैं जितना हमारी जो इच्छाएं या हमारी जो विचारों के साथ मेलजोल करता हो। कभी कभी आप देखते होंगे अन्य संस्था वाले या अन्य जो तथाकथित दर्शन को प्रस्तुत करने वाले हैं वो भगवद्गीता को कोट करते हैं, देखो भगवान ने भगवद्गीता में ये कहा है, तो वो क्या कहते हैं कि जहाँ तक आपके विचारों में बैठता है उन श्लोकों को आप भगवद्गीता से लो और उसको प्रस्तुत करो, और जहाँ आपके विचारों में कुछ ऐसे सिद्धांत या श्लोक बैठता नहीं है उसको त्याग कर दो। अगर वैसा है तो क्या फायदा, तो प्रमाण अगर कोई चीज़ को स्वीकार किया जाता है, अगर शरणागति किसी का स्वीकार किया जाता है, उनका पूर्ण तरीके से 100% सरेंडर होना चाहिए। जब तक ये 100% पूर्ण शरणागति या पूर्ण तरीके से विश्वास के साथ नहीं माना जाता है तब तक उनको उनको शरणागत नहीं मान सकते, या उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शिष्य होते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि देखो ये मेरे गुरु ने भी कहा है इसलिए मैं करता हूँ। तो गुरु ने बहुत सारे चीज़ें कहा, उसको क्यों नहीं पालन करते हो? क्यों पालन नहीं करते? क्योंकि वो हमारे विचार में नहीं बैठता है। तो इसलिए यू कैन नॉट हैव हाफ सरेंडर। उसका एक ऐसा कहावत है कि आई ओनली टेक थिंग्स विच आई लाइक, मुझे जो जो पसंद है वही स्वीकार करूंगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर शरणागति नहीं हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए दूसरों का सहारा लेना, दूसरों को यूज करने की बात हुआ। अभी हिरण्यकश्यपु इधर यमराज का प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन यमराज कौन है? एक महाजन है। लेकिन महाजन जो कहते हैं, जो करते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। यमराज क्या कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमको उनका शरण ग्रहण करना चाहिए। और स्वयं भी यमराज भागवत पढ़ते हैं और भागवत के अनुसार वो भगवान की भक्ति करते हैं। वो बातों को हिरण्यकश्यपु स्वीकार नहीं कर रहा है। वो क्या स्वीकार कर रहा है? वो चीजें जो आज के प्रवचन में एक प्रसंग में आता है पुराण में, वो स्टोरी को कोट कर रहा है जिसमें अपना काम निकाल ले। तो ये बड़ा डेंजरस चीज है, ये भी असुरी प्रवृत्ति है, टू कोट समथिंग फ्रॉम अथॉरिटी। जैसे एक इसका इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट नाय। एक मुर्गी था, रोज सोने की अंडा देता था। तो एक पति को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उनको पत्नी को कहा देखो हमारी जीवन जो है ये मुर्गी की वजह से चलता है, तो रोज़ उनको अच्छी तरीके से खिलाना और रोज़ तुमको एक सोने की अंडा देगी तो उससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो पति गया बेचारा, तो पत्नी देख रही है रोज़ उसको खिला रही है और उसको सोने का अंडा प्राप्त हो रहा है। तो एक पत्नी ने सोचा कि ये मुर्गी जो है उसका आगे का भाग से वो खाता है, आगे का भाग जो है अच्छा नहीं है, वो पीछे का भाग जो है बहुत अच्छा है। इसलिए उन्होंने आगे का भाग को काट दिया, दो टुकड़ा कर दिया और आगे का भाग को काट के उन्होंने खा लिया और पीछे के भाग को रखा ताकि रोज उनको अंडा मिले। अगला दिन उन्होंने देखा अंडा नहीं मिला तो रोने लगी। कुछ दिन के बाद पति आके पूछे क्या हुआ? पत्नी ने कहा देखो मैं सोच रही थी कि हमारा संपत्ति बचे, तो ये मुर्गी जो है आगे से कुछ खाती थी और पीछे से हमको देती थी, तो ये हमारा आगे का भाग तो हमारे लिए जरूरत नहीं था इसलिए मैंने काट के खा लिया। तो ये ऐसे ही है। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप किसी से भी मिलने जाओ भारत में भगवद गीता के बारे में बोलने के लिए, तो वो बोलेंगे भगवद गीता ये तो मुझे मालूम है, भगवान जो कहते हम करते ही है। तो आप पूछो क्या करते हैं, क्या किस क्या कहा भगवान ने? तो भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम करते हैं। तो आगे का लाइन बोलिए, आगे का लाइन हमको मतलब नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते बोला ना, बस हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना धंधा कर रहे हैं, हम अपना व्यापार करते हैं, हम अपना जो भी धंधा है करते हैं, बच्चों को देखभाल करते हैं, परिवार को देखभाल करते हैं। भगवान ने इतना ही कहा भगवद्गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आगे पीछे देखो मत उसको। और एक छोटा सा घटना है, एक कहानी इसको कोट किया जाता है इसके प्रसंग में, अर्ध कुकुट नाय के विषय में। एक मुल्ला था और उनके या उनके मस्जिद में एक अच्छा मुसलमान था, वो रोज आया करता था, भगवान से प्रार्थना करता था, एक अच्छा मुसलमान था। तो उनका मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र मस्जिद आना बंद कर दिया। तो वो जो मुल्ला है, वो मस्जिद का जो इंचार्ज है, उनके घर जाके पूछा देखो आपके पिताजी जो है रोज आया करते थे हमारे मस्जिद में, तो तुम कम से कम हफ्ते में एक दिन तो आया करो, शुक्रवार को तो आया करो। तब उनके पुत्र ने कहा मैंने कुरान पढ़ा है और कुरान में लिखा है कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो ये मुल्ला जो है बहुत परेशान हो गया, मैं तो कुरान रोज पढ़ता हूँ लेकिन ऐसा तो कहीं दिखा नहीं है उधर। तो उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र ने कहा कि ना मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो अंदर जाके वो कुरान लेके आया, कुरान ला के दिखाया उनको, देखो इधर लिखा है कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए, नीचे से पढ़ते हैं ना उल्टा मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो मुल्ला जो है बहुत हैरान हो गया, मैं इतनी बार पढ़ा है लेकिन ये कौन सा कुरान है जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है सच में। तो बाद में वो मुल्ला ने क्या किया, वो आगे वाला पेज खोला, उनके आगे वाला पेज क्या होता है, ऐसा होता है ना उल्टा होता है, तो आगे वाला पेज खोला, खोल के उधर देखता है कि हाथ पैर धोए बिना तो इसको बोलते हैं असुरी प्रवृत्ति, यानी अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कभी कभी हम कोई तथाकथित अथॉरिटी का सहारा लेते हैं और तथाकथित एक प्रमाण का शरणागति स्वीकार करते हैं, तथाकथित महान भक्त का हम ये भी कोटेशन भी करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं तो भगवान ने रासलीला किया तो मैं क्यों नहीं करूं, तो उन्होंने वो क्यों नहीं कहते कि भगवान ने गोवर्धन उठाए तो आप क्यों नहीं करते, तो वो नहीं सोचते। तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु पुराणों का प्रमाण को स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसी बात को स्वीकार कर रहा है जहां उसके लिए उपयुक्त है। और केवल हिरण्यकश्यपु पुराणों को स्वीकार तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में यमराज का प्रवचन भी बाद में सुनाता है हिरण्यकश्यपु। तो इतना बुद्धिमान था, उनको मालूम था कि मेरे सामने जो स्त्रियां बैठी है वो स्त्रियां बड़े बड़े दर्शन को, फिलासफी को नहीं समझ सकती, उनके पास इतना बुद्धि नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सुंदर एक कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानी का शुरुआत होता है ये 28वां श्लोक से। तो 28वां श्लोक में हिरण्यकश्यपु सुनाते हैं, अपना कहानी शुरू करते हैं वो स्त्रियों को। वो कहते हैं कि इन द स्टेट नोन एज उशीनरा देयर वॉज अ सेलिब्रेटेड किंग नेम्ड सुयज्ञ। उशीनर नामक एक जगह, एक राज्य था, उस राज्य का राजा का नाम था सुयज्ञ। व्हेन द किंग वाज किल्ड इन द बैटल बाय हिज एनिमीज हिज किन्समैन सैट डाउन अराउंड द डेड बॉडी एंड बिगैन टू लैमेंट द डेथ ऑफ देयर फ्रेंड। तो जैसे वो बड़ा सा एक युद्ध में उनको भाग लेना पड़ा, युद्ध में भयानक सा युद्ध हुआ, उसके अंदर अच्छी तरह से उन्होंने युद्ध किया, लेकिन अंततः क्या हुआ, उनको मृत्यु हुआ, परास्त हो गए और उनका मृत्यु हुआ। जब मृत्यु हुए तो सारे जितने में उनके अनुचर थे, उनके जो पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, सब लोग, उनके पारिवारिक वाले बंधु सब लोग आए, आके सब लोग उनके पास आके रोने लगे। बाद में 29वां श्लोक में या 29th वर्स में वो वर्णन है कि उनका मरा हुआ शरीर का वर्णन है। जब कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति का मृत्यु होता है, रोना स्वाभाविक है। क्यों हम रोते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ से आसक्त हो जाते हैं, वो आसक्त जिस वस्तु से हम होते हैं वो हम सारी हाथ से खो जाते हैं या खो जाता है, उस समय ये जो रोना है, लैमेंटेशन है, ये शोक है, वो स्वाभाविक है, इट इज़ वेरी नेचुरल। आप उसको भौतिक जगत में हर जीव, हर एक कोई ना कोई वस्तु से आसक्त है। इवन बच्चा भी, बच्चा का स्वभाव है कोई ना कोई चीज़ गुड़िया के प्रति या कोई गेंद के प्रति आसक्त हो जाता है, उसके हाथ से रोना करता है। तो इसलिए कहा जाता है ये आसक्ति ही हमारा रोने का कारण है, दुख का कारण है। और जिस समय हम अनासक्त हो जाएंगे उस समय सारे शोक से हम मुक्त हो जाएंगे। जो भी भौतिक वस्तु है, जितना हम संग्रह करके रखते हैं, जितना हम इकट्ठा करके रखते हैं, जितना हम आसक्त होकर रखते हैं, वही जो है हमारा दुख का कारण है। इसलिए हम जो सोचते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, भगवान कहते हैं वही वस्तु जो है आपको आगे आके दुख देगा। यही संस्पर्श जो आप होगा, दुख का योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय अनते श्रमते बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति वो उसका विचार इस प्रकार रहता है, उसको मालूम है कि सुंदर दिखाई पड़ रहा है सामने, बाहर सुख का प्रस्ताव रख रहा है वस्तु, लेकिन अंदर उसके अंदर दुख है, दुख भरा हुआ है। तो ये कलयुग का लक्षण है, सभी लोग क्या करते हैं, वो पैकेट के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, अंदर कुछ भी क्यों ना हो वो देखते नहीं है, कितना सुंदर पैकेट है उसको अच्छी तरह से वो बिका जाता है। तो वैसे ही ये भौतिक जगत में कितने भी कोई भी वस्तु क्यों ना हो, धन हो, स्त्री हो, या कोई भी घर हो, कुछ भी हो, पदवी हो, या कोई भी कुछ भी हो, बाहर से उसका एक सुख का एक लेपन है, देयर इज अ नाइस कोटिंग ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन अंदर क्या है, वो दुख भरा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो जो कोटिंग है उसको खोल के देखता है, अंदर दुख है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ये जो भौतिक चीजों का प्रस्ताव जो है, भले ही उनके कर्मों के अनुसार भी उनके पास भी क्यों ना आता हो, अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा, एक एक व्यक्ति के कर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें आते हैं, मान सम्मान प्राप्त होता है या धन प्राप्त होता है, बिना प्रयास का ही कभी कभी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके कर्मों में रहे अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भले ही उनके कर्मों के अनुसार भी क्यों ना प्राप्त होता हो, उसको बोलता है नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि ये सब जितने भी है जो दिखाई पड़ रहे भोग की सामग्री के रूप में या दिखाई पड़ रहे सुख के प्रस्ताव लेके आ रहा है, लेकिन इसके अंदर दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि ये मेरे हाथ से जब छूट जाएगा तब वो दुख का अनुभव होता है। अब देखिए, कोई भी वस्तु इस जगत में जिसके साथ हम संबंध प्राप्त करते हैं और सुख देना शुरू करता है, स्वाभाविक आसक्त हो जाना। इसलिए शास्त्रों के अनुसार बचपन से व्यक्ति को ये तपस्या का प्रशिक्षण दिया जाता है। भले ही सुख की सुविधा भी क्यों ना हो, ये उन सुविधाओं को नहीं बोलना, ये तपस्या कहा जाता है। वन शुड हैव द स्ट्रेंथ टू से नो टू मेटीरियलिस्टिक थिंग्स। क्योंकि ये जरा सा सुख का आदत हो जाता है, कोई भी चीज का आदत हो जाता है, तो उससे छूटना, वो उसका नासक्त होना अति मुश्किल है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए ये स्त्रियां सभी लोग वो रो रहे थे। क्यों? क्योंकि अपने जो ये राजा है, उनके पति है, बंधु है, मित्र है, उनके उनको उनका मृत्यु हुआ है। अभी उनका मरा हुआ शरीर का वर्णन है ये आगे की दो श्लोकों में, यानी 29th और 30th श्लोक में, 29वां और 30वां श्लोक में ये सुयज्ञ नामक जो राजा है उनका मरा हुआ शरीर का वर्णन है। कैसा था? His golden bejeweled armor smashed। उनका सोने का कवच था और वो कवच के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर गहने थे और बहुत सुंदर आभूषण थे और वज्र और वैढूर्य से युक्त उनका कवच था, उनका छाती के ऊपर कवच। वो कैसा था? वो टुकड़ा टुकड़ा होकर गिर पड़ा था। तो इससे हम एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या शिक्षा है? हम अपने आप को रक्षा करने के लिए बहुत सारे योजना बनाते हैं। कोई व्यक्ति वो ये जिस प्रकार ये राजा ने कवच को धारण किया था, वैसे हम बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं। हम अनेकों लोगों के प्रति, अनेकों चीज़ों के प्रति विश्वास रखते हैं। लेकिन कितना भी कुछ भी हमारा रक्षा करने की योजना बनाई जाए, लेकिन जब समय आता है, काल आता है, वो हमको मरना ही पड़ेगा। वी हैव टू डाई। तो उनके पास बहुत सुंदर कवच था, वो कवच टूटा पड़ा था। हिज ऑर्नमेंट्स एंड गार्लैंड्स फॉलन फ्रॉम देयर प्लेस। और भी अन्य जो मालाएं धारण किए थे और गहने धारण किए थे, वो सब उनके शरीर से निकल के छिन्न भिन्न होकर गिरा पड़ा हुआ था। हिज हेयर स्कैटर्ड एंड आईज लस्टरलेस। उनका बाल जो है, सुंदर तरीके से सजा हुआ बाल था, वो ऐसे बिखरा हुआ हो गया। और ये जो सुयज्ञ का जो शरीर का वर्णन करते हैं हिरण्यकश्यपु, कि उनका आंखों में कोई तेज नहीं रहा, क्योंकि उनका मृतत्व शरीर, मरा हुआ शरीर हो गया। और द स्लेन किंग लाई ऑन द बैटल फील्ड। ये जो शरीर है वो युद्ध क्षेत्र में गिरा पड़ा हुआ था। इज एंटायर बॉडी स्मियर्ड विद ब्लड। उनका पूरा शरीर का जो खून, शरीर खून से भरा हुआ था। और इज हार्ट पियर्स विद एरोज ऑफ एनिमीज। जो उनके शत्रु है, उनके क्षत्रियों का बाण के द्वारा उनका पूरा शरीर छेदन किया गया था। व्हेन ही डाइड ही हैड वांटेड टू अलो हिज पावर्स दैट ही हैड बिटन हिज लिप्स। जब और भी वर्णन है कि जब वो युद्ध कर रहे थे, वो सुयज्ञ, उस समय अपना शक्ति को दिखाने के लिए अपने दांतों से अपने होंठों को चबा रहा था, ऐसा कर रहा था ताकि दूसरों को दिखाई पड़े मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और शक्ति नहीं मेरे पास, क्रोध भी है। ऐसा माना जाता है जब व्यक्ति क्रोधित होता है तब उसके अंदर का जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा बाहर प्रकट होता है। तो जब उनका मृत्यु के नज़दीक था ये सुयज्ञ, उस समय वो अपनी दांतों को चबा रहा था, यानी दिखा रहा था मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं आपको मार दूंगा, ये कर दूंगा। जब गुस्सा आता है व्यक्ति को, क्रोध आता है, उस समय अपने आप को बड़ा ही समझ के बैठता है। वो सोचता है कि मेरे बराबर का कोई नहीं है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो करूँगा। तो अस्तित्व में हमारे जो सारे प्रयास है ये विफल है। इट इज इट ऑल गो इन वेन। इस प्रकार सुयज्ञ एक क्रोधित हुए अवस्था में अपना सारा शक्ति को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर सकता, लेकिन विधाता के सामने जिनका जो विधि है, उनका जो कर्म है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। एवरीबडी हैज टू बाउ डाउन इन फ्रंट लॉज ऑफ द लॉर्ड। उनके कर्मों को जो नियंत्रण करने वाले जो देवता है, उनके सामने सबको झुकना ही पड़ेगा। प्रकृति के गुणों के सामने, भगवान की शक्ति के सामने सबको एक दिन झुकना ही पड़ेगा। कितना भी गुस्सा भी दिखाओ, एक बार एक व्यक्ति गुस्से में कुछ भी बोलता रहता है कि नहीं, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है वो समय जो बोलता है उसको खुद को नहीं मालूम। वो गुस्से में वो कभी कभी ऐसा कुछ बोल देता है कि मैं तुमको वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे बराबर का कोई नहीं है, क्या जानते हो अपने मुझे, ऐसा ऐसा कुछ शब्दों को उच्चारण करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, देयर इज नो मीनिंग फॉर इट। तो उस समय व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है टोटली पगला गया है, ही हैज गॉन मैड। क्योंकि व्यक्ति को जब गुस्सा आता है उस समय क्या करता है, वो अपने आप को भगवान मान के बैठता है, ही एक्चुअली थिंक्स दैट ही इज गॉड। तो ये गुस्सा जो है व्यक्ति को पागल बना देता है, इट मेक्स ए पर्सन मैड। तो ये किस प्रकार का मैडनेस है, किस प्रकार का पागलपंथी को बना दे, पागलपंथी है, वो सबसे सर्वोच्च पागलपंथी है। प्रभुपाद जी कहते हैं द टॉप मोस्ट मैडनेस इन दिस वर्ल्ड इज टू थिंक दैट आई एम गॉड। मैं ये सोचना कि मैं भगवान हूँ, ये सबसे बड़ा पागलपंथी है। और ये पागलपंथी कब आता है मालूम है, जब वो व्यक्ति गुस्सा होता है वो टाइम में आता है। व्हेन समबडी बिकम्स एंग्री एट दैट टाइम ही एक्ट्स एंड ही स्पीक्स दैट एज इफ ही इज गॉड। ये मालूम है सब किसका है, मेरे बराबर कोई है क्या, चुपचाप बैठता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर ये कर सकते हो, क्या क्या बोलता रहता है। असलियत में जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है वो जो भी बोलता है उसको रिकॉर्ड करके बाद में उसको सुनाना चाहिए। और जैसे जैसे रिकॉर्ड ही नहीं, उसका पूरा वीडियो निकाल के दिखाना चाहिए। वो टाइम में उसका वो चेहरा क्या विकराल हो जाता है, अपने ओंटों को, खुद के ओंटों को अपने दांतों से चबाता है, तो क्या क्या नहीं करता है। तो ये बड़ा ऐसे परिस्थिति में उसका मृत्यु हुआ। ये राजा का क्या कर रहा था, ही वॉज biting his lip and he had bitten his lips and his teeth remained in that position. वो गुस्से में अपना होंठों को दांतों से चबा रहा था और उसी समय उसका मृत्यु हुआ। इस सुयज्ञ का जो मृत्यु हुआ ऐसा वर्णन है कि मरने के बाद भी उसका दांत जो अपने होंठों में घड़े हुए थे और teeth remained in that position. His beautiful lotus-like face was now black and covered with dust from the battlefield. ये बड़ा सुंदर था ये व्यक्ति सुयज्ञ, राजा था, बहुत शक्तिशाली था, उनका मुख जो था वो पूरा कमल के बराबर था, इतना सुंदर उनका मुखमंडल राजा का। ये मृत्यु के बाद कैसा रहा, एकदम काला काला हो गया और पूरा शरीर भर जो युद्ध क्षेत्र का धूलि से उनका भरा हुआ था उनका शरीर, यह इतना विकराल, इतना भयानक स्वरूप उसका हो गया था। और आगे कहा जाता है कि हिज आर्म्स एंड हिज स्वॉर्ड्स एंड अदर वेपन्स वर कट एंड ब्रोकन। जो सोच रहा था कि मैं जिससे जिस तलवार के द्वारा मैं अपने शत्रुओं का हाथ पैर काटूंगा, वही तलवार कटा हुआ था और साथ साथ में जिस हाथ से अपना तलवार को पकड़ा था वो हाथ भी कटे हुए थे। और जिस पैर से सोच रहा था कि मैं दूसरों के राज्य में जाके आक्रमण करूंगा, वही पैर जो है वो कटे हुए थे। और जिस रथ में वो जाके जा रहा था, सोच रहा था कि ये रथ जो है आगे जाके दूसरों की सेना को मैं आक्रमण कर लूंगा, वो करूंगा, नाना प्रकार के सपना देखा था, ठीक विपरीत हुआ। अस्तित्व में जो व्यक्ति योग्यता के बिना बड़े बड़े सपना देखता है, वो जो सपना देखा है उसके ठीक विपरीत होता है। जो व्यक्ति सपना देखता है मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन अगला दिन देखा कि जो पहले था उसके पास पैसे वो भी खत्म हो गए, वो भी चोरी हो गया। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार हमको ये सीखना चाहिए कि ज़्यादा बड़ा चढ़ा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भगवान ने दिया है हमको योग्यता, जो भी कुछ मिला है भगवान की कृपा से, उसके अनुसार कुछ कार्य करेंगे और उनका सेवा करते अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए सरलता जो है ये वैष्णव का गुण होता है। सिंप्लिसिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए डिवोटी। भगवदगीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति वांग मन तपोच्छते, ये मन तपोच्छते, मन के स्तर में जो तपस्या है वो क्या है, सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड, आर्जवम कहते हैं। आर्जवम मतलब क्या है, ये स्थिति को जानना, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है, इस प्रकार सरलता से जीवन यापन करना चाहिए। अपने आप को जितना बड़ा बनने के लिए प्रयास करेंगे उतना जोर से भौतिक शक्ति हमारे ऊपर गिरेगा, क्योंकि भगवान हर एक प्रकार की व्यक्ति के अंदर दोष को सहने के लिए तैयार है, लेकिन एक दोष जो है भगवान को पसंद नहीं है, वो आते आते तुरंत उसको खत्म कर देते हैं, वो है घमंड, वो होते हैं अहंकार। किसी के भी व्यक्ति क्यों ना हो, भक्त में क्यों ना हो, अभक्त में भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जब जैसे उनके प्रति अहंकार आता है तो उसी समय भगवान को लगता है इसको मैं कैसे खत्म करूं। इंद्र के पास आए, हिरण्यकश्यप, सारे जगत में जहां जहां जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार को देखा गया है, भगवान ने ऐसा एक प्लान बनाया ताकि उसी को उधर खत्म करे। सारे जगत सीखे कि आप अहंकार मत करो, डोंट बिकम पफ्ड अप, तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब बातों को बोलना खत्म, बंद करो, डोंट स्पीक ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज जितना आप बोलेंगे भगवान वो सब नोट करते हैं, क्योंकि कृष्णा इज देयर इन एवरीबडीज हार्ट, ही नोज। आपने बोला अच्छा कर सकते हो, करके दिखाओ, तो करने जाएंगे उसी समय ठाप करके गिरेंगे। एग्जैक्टली, डोंट बिकम प्राइड। अहंकार में जो भी हम बोलते हैं, क्रोध में जो भी हम बोलते हैं, ठीक उसका विपरीत होता है, एग्जैक्टली इट हैपेंस उल्टा, बिकॉज कृष्णा वॉन्ट्स टू टीच यू ए लेसन, ये कृष्ण शिक्षा देना चाहते हैं स्वयं को और सारे जगत को, जब भी उठो मत, डोंट बिकम पफ्ड अप। तो ये भी राजा का भी इसी स्थिति था कि वो बड़े अहंकार से वो सोचने लगा मैं वो करूंगा, गुस्से से वो करूंगा, लेकिन सब खत्म हो गया बाद में। His arms with his sword and other weapons were cut and broken. उनके हाथ के साथ उनका जो तलवार, सारे जितने भी धनुष बाण जो भी था, सब कुछ काट तोड़ तोड़ के नीचे गिरा पड़ा था वो। वैसी स्थिति को देख के रानियां, ये श्लोक में हिरण्यकश्यपु रानियों का जो स्थिति है वो वर्णन करते हैं। When the queens of the king of Ushirna saw their husband lying in that position, जैसे श्लोक में आया उशीर्णेनेदरम विधिना ततः कृतम, ये पहला लाइन में जो आया है कि विधिना, ये लाइन में जो शब्द आया विधिना, विधि के अनुसार, विधि मतलब नियम, क्या नियम है, कर्मों का नियम है, द लॉ ऑफ नेचर, हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा। तभी ये जो सुयज्ञ राजा है उनका मृत्यु क्यों हुआ, उनके कर्मों के हिसाब से हुआ, विधि ना मतलब उनके कर्मों के हिसाब से हुआ, कर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कर्म मतलब कर्मों का रिएक्शन, कर्म का जो सत्ता है, भगवान का विधि जो है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। जैसे कुछ भी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सभ्य परिवारों में ये शिक्षा दिया जाता था कि जब कोई भी चीज़ ऐसा घटना घटता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो दुखी होने से अच्छा है खाली इतना बोलना कि ये मेरा कर्म है करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। उस समय अगर कोई व्यक्ति ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह से हुआ, नाना प्रकार का रिसर्च और इन्वेस्टिगेट करने जाता है तो वो मूर्ख है, क्योंकि जो भी हुआ आपके कर्मों के हिसाब से हुआ, नहीं इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, तो ये सब प्लान करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हुआ अपने कर्मों के हिसाब से हुआ। तो हमको अभी भी मालूम है, जब भी कोई भी कुछ गड़बड़ होता था घर में तो हमारी जो दादी है वो यही कह बैठ जाती थी, चुपचाप एक जगह बैठ जाती थी और हाथ हाथ को सर के ऊपर रख के बोलती थी ये मेरा कर्म है करके बैठ के आराम से भगवान का भजन कर लेती थी। तो ये एक छोटा सा लाइन, हाँ दिस इज माई कर्मा, ये बोल के चुपचाप बैठ जाने में हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम का समस्या है, समस्याओं का समाधान है। अगर उसको ये करने जाएंगे, ऐसा क्या हुआ, ये क्या हुआ, हंगामा करने जाएंगे, उसके वजह से हुआ, झगड़ा करने जाएंगे, तो हमारा ही नुकसान है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो इधर विधि ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे जितने पत्नियाँ हैं
उनको ये बात मालूम नहीं था, ये बात देख नहीं पा रहे थे कि उनके कर्मों की वजह से इसका मृत्यु हुआ। ये सुयज्ञ विधिना तथा कृतम, ये जो परिस्थिति है, इस प्रकार की परिस्थिति, ये सुयज्ञ नामक राजा को क्यों प्राप्त हुआ? अपनी कर्मों की वजह से प्राप्त हुआ। तथा कृतम पतिम महिषयः प्रसमीक्षा, प्रसमीक्षा मतलब देखे, कौन लोग देखे? उनकी पत्नियों ने देखा, पत्नियों ने देख के दुखी था, बहुत दुखी हो गए। दुखी होने के बाद वो लोग क्या किया, हतास्म नाथ, हे नाथ, वो लोग बोलने लगे, हे नाथ हतास्मात, हतास्मात बार बार इस बात को बोलने लगे कि हे नाथ आप तो मरे लेकिन आपके साथ हम भी मर गए, वी ऑल्सो डाइड अलॉन्ग विथ यू। क्योंकि उनका आसक्ति ऐसा था, तो जब कोई चीज से बहुत आसक्त होते हैं, जब वो वस्तु का दुख होता है तो हमको भी दुख लगता है, वो वस्तु टूटता है या गिरता है और मरता है तो हमको भी ऐसा लगता है मैं भी मर गया हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, जैसे आजकल लोगों का सबसे प्रिय होता है अपना गाड़ी, कार, इसको बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, बोले अपने बच्चों को ज़्यादा देखभाल नहीं करते, अपनी गाड़ी को अच्छा देखभाल करते हैं बम्बई में। तो जा रहा है रास्ते में, थोड़ा ट्रैफिक जाम में दूसरा गाड़ी की वजह से थोड़ा सा खरोच आ गया, तो पूरा ट्रैफिक को रोक देता है, नीचे उतर के देखो क्या हुआ, तुमने ऐसा किया वैसा किया, झगड़ा करने लगता है। अगर उसको चोट लग के उसको खरोच आए, खून निकलने लगा, ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी को ज़रा सा ही खरोच आया तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे लगा, इट हैपेंड टू मी। क्योंकि उसकी जो चेतना है वो गाड़ी के अंदर से प्रवाहित कर रहा है, और वो सोचने लगता है कि मैं ही एक गाड़ी हूँ, गाड़ी को दुख लगा तो मुझे दुख लगा, आई एम दिस कार, अगर नहीं तो क्यों, गाड़ी तो उससे अलग चीज़ है, तो उसको खरोच लगा तो उससे क्या मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी को खरोच लगता है तो ऐसा दुखी होता है ताकि उसको खुद को लगा। तो वैसे ही इसी बात के द्वारा हमको ये शिक्षा प्राप्त होता है, हम ये शरीर नहीं हैं, जिस प्रकार वो व्यक्ति वो गाड़ी नहीं था, लेकिन अगर शरीर को कुछ होता है, दुख होता है, हम ये सोच के बैठते हैं कि अरे मुझे हुआ, मुझे मारा, वो किया, अस्तित्व में आत्मा का वो शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति की वजह से वो सोचने लगता है कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर को कुछ भी हुआ तो मुझे हुआ, मुझे मारा, मुझे दुख लगा। तो ये बात को ये समझना चाहिए कि ये पत्नियाँ, वो उनकी पति से इतना आसक्ति, तो पति का मृत्यु होते ही वो बोलने लगे कि आपका मृत्यु नहीं हुआ, हमारा हुआ है, आपका मृत्यु के साथ साथ हमारा भी हो गया, क्योंकि आप हमारे हम आपसे इतना आसक्त है, वी आर सो अटैच्ड टू यू दैट। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ये जो असुर लोग है, पहले क्या करते थे कि बड़े राक्षस लोग अपना जो जान है, अपना जो प्राण है, वो कोई और चीज में रखते थे, दे यूज टू कीप इन somebody else, somewhere else, कहीं और रखते थे। तो अगर कोई व्यक्ति उसको मारना चाहता है तो उसको कितना भी बाण मारो, उसको भी कितना भी तलवार से काटो शरीर को, वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? उसका प्राण कहीं और है। लेकिन जहाँ प्राण रखा है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई बहुत गुह्य जगह जाके, एक जैसे अहिरावण है ना, सॉरी महिरावण है, उसका वर्णन था रामायण में कि महिरावण का जो आत्मा था, उनका जो जान था, वो कहीं और छुपा के रखा था। इसलिए जब ये हनुमान जाके उनको मारने के लिए प्रयास कर रहे थे, कितना भी मारने के लिए प्रयास करते कुछ भी नहीं होता था, वो तलवार से काटा जाता लेकिन फिर भी कुछ कुछ नहीं होता था। तब महिरावण की जो बहन है वो जाके उन्होंने कहा हनुमान को कि इसका जो जीवन है इधर नहीं है, एक गुह्य जगह हिमालयों में रखा हुआ है, तो एक बड़ा सा सुंदर सा गुलाब फूल है, सहस्त्र पत्तों वाला फूल है, उसके अंदर से जाना होगा, उधर ऐसा एक गुफा है, बहुत सारे सांप है उसको देखभाल करने वाले, और उधर एक दीप है, और वो दीप को जलाना होगा और बुझाना होगा आपको। जब आप ये दीप को बनेंगे तब आप ये मही रावण का जो जो प्राण है वो निकलेगा। तब राम और लक्ष्मण थे उधर और हनुमान भी, उन्होंने प्लान बनाया कि क्या प्लान बनाया कि हनुमान जाएंगे उधर और वो दीप को बुझाएंगे और साथ साथ में उसी समय जो है वो राम मही रावण को गला काटेंगे तो तब उसका मृत्यु होगा। तो हनुमान गए वो हिमालयों में जाके, उन्हें बड़ा सा सरोवर था उसके अंदर एक बहुत सुंदर सा कमल का फूल था, वो उसके अंदर से नाल के अंदर से नीचे गए। नीचे जाते उन्होंने देखा उधर एक बड़ा सा गुफा है, गुफा के चारों ओर से बहुत भयानक से जहरीला सांप का मुख से जहर का हवा बह रही है। तो हनुमान कैसे भी कैसे करके क्या किया, वो अपने पिता कौन है वायुदेव उनसे प्रार्थना किया, तो उनके वायुदेव के पास से अंदर गए और उधर चार दीप थे, एक नहीं था, एक को बुझाते हैं तो दूसरे जगह से दूसरे बुझाने जाए दूसरा जल जाता है। तब हनुमान ने फिर से वायुदेव से प्रार्थना किया तो वायुदेव ने कहा ये चारों दीप जल रहा है, मेरी कृपा से तो जल रहा है। तो हनुमान प्रार्थना करके अपनी ये चारों दीपों को बुझाया, तब मही रावण को मारा गया तो साथ साथ में उनका मृत्यु हुआ। तो ये जो बही प्राण कहा जाता है इसको, बही प्राण मतलब क्या है, हम जो जिस व्यक्ति जो चीज से आसक्त हो जाते हैं हमारा प्राण उसके अंदर रह जाता है। कभी कभी मान लीजिए हमको कितना ही मारा जाए, हमारा प्रिय व्यक्ति जीवित है इसके लिए हम भी कभी कभी जीवित हो जाते हैं या फिर वापस प्राण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इधर ये पत्नियां कहती है कि आप से हम इतने आसक्त हैं, आपको मारा गया है इसलिए हमारा भी हतप प्राणा, हमारे प्राण चले गए। हतस्मा सटनली नातः हत हम मर गए इति करे ही उरा ब्रासम। और इस प्रकार वो सोचने लगे कि हम मर गए करे अपने हाथों से अपने स्तनों को बार 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 पीटने लगे, बोलने लगे अस्तित्व में आप मर गए हो, आप मरने के बाद हम भी मर गए लेकिन फिर भी लग रहा है कि हम जीवित है इसलिए मैं अपने आप को मारना चाहती है। तो आगे के श्लोकों में वर्णन है कि किस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां पहले ये सती का कार्य करती थी, सती करती थी, सती मतलब पत्नी का पति का मृत्यु हुआ उनका साथ साथ वो भी अपने आप को जाके मर जाती थी। और प्रभुपाद लिखते हैं उसके तात्पर्य में कि मैं अपनी आंखों से भी हमने देखा है कि एक पति का मृत्यु हुआ है और उनके साथ साथ पत्नी भी सती करने जा रही है और एक बड़ा उत्सव होता है, दोनों को रथ पे बिठा के लेके जाया जाता है और पति का चिता जल रहा है, उसके अंदर पत्नी जो है खुशी खुशी स्व इच्छा से जाके प्रवेश करती है, ये पतिव्रता का लक्षण होता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धीरे धीरे से समाप्त हो गया क्योंकि उसके पीछे जो उद्देश्य और भाव बराबर नहीं था, जबरदस्ती हो गया था इसलिए वो समाप्त हो गया, आजकल वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये लोग भी ऐसे सोचने लगे, अपनी छाती को बार बार ऐसे से पीटने लगे, अपने आप को छाती को पीटना मतलब क्या है, मैं जीवित होके क्या जीने का क्या फायदा है, मैं मर जाऊं उससे अच्छा अपने आप को आत्महत्या करने के लिए वो प्रयास करने लगे। करे ही उरा भ्राशम ज्ञा क्या मुहुर, बार बार वो मारने लगी। तत्पदयोर उपपतम और क्या करने लगी, वो राजा के चरण के ऊपर गिर पड़ी और सारे जितने भी अन्य लोग थे वो भी वो सुयज्ञ राजा के प्रति जाके वो गिर पड़े। और उसके बाद वो सोचने लगी, सती करने के विचार करने लगी और बाद में कथा आती है किस प्रकार एक बालक उधर आता है, यमराज ही बालक का रूप धारण करके आके सुंदर प्रवचन देते हैं। लेकिन सार रूप में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान के जो शक्ति है उसके सामने वो कुछ नहीं है, नोबडी इज एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एनर्जी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वी मस्ट देयरफॉर एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफर्ड टू अस बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जो भगवान की विधान के अनुसार, जो अपने कर्मों के विधान के अनुसार जो स्थिति हमको प्राप्त हुआ है वो स्थिति में हमको खुश रहना सीखना चाहिए। वॉट एवर इट कम्स, ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ ही मेरे लिए एक प्रसाद है, इसे संतुष्ट होना सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि नामक धन नहीं है वो हमेशा रोता रहता है, ही विल बी ऑलवेज क्राइंग। तो भक्त लोग हमेशा संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमेशा आनंदित रहते हैं, उनके अंदर कोई अहंकार का बात नहीं रहता है। अहंकार की वजह से हम नाना प्रकार की पागलपंती की बात कहते हैं, जो 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 बात हमने कहा ठीक विरुद्ध होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे बराबर का कोई नहीं है, तो तुरंत उसका विपरीत होता है, सब जो है आपकी आपसे ऊपर चले जाएंगे, भले ही आपके पास योग्यता है। ये अहंकार जो है हमारी योग्यता को भी अयोग्यता बना देता है। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्षमता है, मेरे बराबर कोई गा सकता है, कि आपके पास सच में ऐसा क्षमता है सुंदर गाने का, लेकिन ये अहंकार के वजह से आपने ऐसा बोल दिया। आप देखिए कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिन क्या, एक दिन काफी है, उसी क्षण में कोई आपको ऐसा कुछ सुना के जाएगा कि आप बोलने के लिए जाएंगे तुरंत, तो कुछ कहने के लिए जाएंगे, गाने के लिए जाएंगे, वो बराबर बैठेगा नहीं, सब लोग निंदा करने लगेंगे इमीडिएटली। द प्राइड इवन डिस्ट्रॉयज आवर नेचुरल एबिलिटीज, मेटेरियल एबिलिटीज विच वी हैव। तो ये अहंकार क्यों आते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं कि जो हमको मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। सो लेट मी एक्सेप्ट इट एज कृष्णाज मर्सी एंड लिव ए वेरी सिंपल लाइफ। तो सरल जीवन यापन करना सीखना चाहिए, और सरल जीवन तभी हम यापन कर सकेंगे जब हम ये जानेंगे कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, आई एम नॉट द कंट्रोलर। मैं जैसा बोला ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने उसको बुलाया तुम क्यों नहीं आया, तो इस प्रकार की भावना रखना, टू थिंक दैट आई एम द कंट्रोलर, दैट्स ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वी शुड बी वेरी केयरफुल। और इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये आसक्ति के विषय में हम कहना चाहते हैं, कभी कभी महान भक्तों का, जो मान लीजिए जयदेव गोस्वामी का स्मरण कर रहे थे उस समय, जयदेव गोस्वामी की पत्नी, वो जयदेव गोस्वामी का मृत्यु हुआ करके खबर मिला, कौन ये रानियों ने कुछ उनकी पतिव्रता को मापने के लिए वो लोग बताए कि आपके पति का मृत्यु हो गया। जैसे ये बात को उन्होंने सुना पद्मावती ने, तो क्या किया, अपने शरीर को छोड़ दिया पद्मावती। तो ये जो महान भक्तों के बीच में इस प्रकार का आसक्ति होता है, ये आसक्ति को इस प्रकार का आसक्ति से तुलना नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण हम देंगे, यह व्यासदेव का पुत्र, जैसे सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, जन्म होते ही सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, वो जंगल की ओर भाग गए। जब जंगल की ओर भागे तब व्यासदेव पीछे पीछे भागे, पुत्रे थी क्या हो गया, तुम चले जाओ तो मेरा क्या होगा, ऐसा सोचने लगे। लेकिन उधर आचार्य वर्णन करते हैं, ये जो आसक्ति जो तथागत दिखाई पड़ रहा है वो भौतिक स्तर में नहीं है। व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पुत्र मोह में नहीं भागे, बल्कि वैष्णव विरह में भागे। तो ये जो असुरी समाज में इस प्रकार जो दिखाई पड़ रहा है, कहीं कहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये दो भक्तों के बीच में आसक्ति जो है वो भी भौतिक स्तर का है, लेकिन वो भौतिक स्तर का नहीं है, ये बात को जानना चाहिए। ये जो लैमेंटेशन है, इस प्रकार जो हो रहा है, ये असुरी समाज, इट इज ऑन द मेट कम्प्लीटली मेटल प्लेटफॉर्म। और एक असुर का मृत्यु हुआ है, असुर की पत्नी अपनी जो भौतिक आसक्ति, ये भी असुरत्व है, वो भी दिखाई पड़ रहा है, और एक असुर हिरण्यकशिपु उनको प्रवचन दे रहा है। ये उनको बहुत सारे तथाकथित भागवत सप्ताहों में जो अलग अलग जगह होता है उस पर दिखाई पड़ता है, ये एक असुर बैठ के प्रवचन दे रहा है और अनेकों असुर उसको आयोजन कर रहे हैं और अनेकों असुर बैठ के सुन रहे हैं। क्यों, उधर कहीं भी कृष्ण का वर्णन नहीं है, कोई कृष्ण भक्ति का लेश मात्र भी वर्णन नहीं होता है, केवल धर्म के नाम के अधर्म का ही प्रचार होता है। जो वक्ता है वो सोच रहा है कि 7 दिन जैसे खत्म हो जाएगा वो मुझे धन मिलेगा, जो आयोजन करते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं ये आयोजन करूँगा तो मेरा नाम थोड़ा हो जाएगा, और जो बैठे हैं वो भी सोचते हैं घर में कुछ काम करने को तो है नहीं, इधर आके बैठ जाते हैं ऐसे टाइम पास करने के लिए। तो ये ऐसे ही प्रसंग है इधर। तो कभी कभी आध्यात्मिक का चर्चा ये असुरों के समाज में होता है। क्यों, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से नहीं हो रहा इधर, नॉट हैपनिंग। अंततः देखते ही हिरण्यकश्यप ऐसा प्रवचन समाप्त करने के बाद पत्नियां शांत होगी, तब उनको आश्वासन, तुम चिंता मत करो, आप लोग चिंता मत करो, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरा भाई को मारने वाले विष्णु का बदला लूंगा, उनको मार के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इतना आत्मा का प्रवचन करने का नतीजा क्या था? मैं विष्णु को मारूंगा। तो ये हिरण्यकेशु का प्रवचन है, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन से नहीं, टीका है, कोई टिप्पणी, प्रश्न पूछिए। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।